पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 17। नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धे सल्लक्षणिकं सन्मात्रं वायतः स्वतः सिद्धं तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च। यह ग्रंथ राशि पंचाध्यायी है और उसके पृष्ठ संख्या 46 पर हम आए। 46 196 नंबर का श्लोक अभी पढ़ने जा रहे हैं हम। यहाँ पर्यायों का निरूपण चल रहा है। पर्यायों में पहले हमने व्यतिरेकी और क्रम की बात देखी थी, अब यहाँ शंका समाधान में वही बात उन्होंने दोबारा विस्तार से बताई थी, उसके लिए दृष्टांत भी दिए थे। अब यहाँ 196 नंबर का श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो समाधान का ही अंश है। ये जो बताया था कि गुण में जो अंश होते हैं, यानी जो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, वो तो हमेशा कायम रहते, पर्यायों में ही नाधिक प्रकट होते, और उसके लिए कारण वो तो ये जो कायम रहने के लिए अगुण लघु गुण वो बताया था कि उससे किसी भी शक्ति का कभी नाश नहीं होता है और जितनी उसमें शक्ति है वो हमेशा बनी रहती है और पर्यायों में ही नाधिकता हो जाती है। इसके लिए फिर शंकाकार ने शंका उठाई थी, ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर 196 नंबर अभी हम पढ़ेंगे। जांगुन दे यथा सती जायन्ते कुण्डलादयो भावा अथ सत्सुतेषु नियमा उत्पादादि त्रयम् भवत्येव। सोने की सत्ता मानने पर ही तो उसमें कुंडलादिक भाव होते हैं, यानी कुंडलादि पर्याय, हार है, कंगन है, कुंडल है, तो सोना ही नहीं होगा तो किसमें से होगे, और उन कुंडलादिक भावों के होने पर उनमें उत्पादादिक घटते ही है। उत्पादादिक यानी उत्पाद व्यय और द्रव्य घटता है उसके अंदर।
सोना
जांबुनद यानी सोना, जिस समय सोना कुंडलाकार हो जाता है उस समय सोने में पहली पांसे रूप पर्याय का विनाश होकर, उस दिन वो लट कहा था ना पांसा ने, वो तो लगड़ी था, कुंडल रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। सोना दोनों ही अवस्था में है इसलिए सोने में उत्पाद आदि त्रय तो घट जाते हैं, परंतु सोने के प्रदेशों में वास्तव में किसी प्रकार की नवीन उत्पत्ति अथवा नाश नहीं होता, केवल आकार से आकारांतर होता है। प्रदेश तो वैसे के वैसे होते उतने ही रहते हैं, वो अन्य अन्य आकार धारण करते हैं। यदि सोने को अनित्य ही मान लिया जाए तो पासे के नाश होने पर कुंडल किसका बने, इसलिए नित्य पदार्थ में ही उत्पाद आदि तीनों घटते हैं, अनित्य में नहीं।
पासे लिखा है,
पासे चाहिए ना,
वो चाहिए,
हाँ वो चाहिए, पासा कहते हैं उसको। सोने को अगर अनित्य मानेंगे तो उसकी दूसरी जो अवस्था बननी है कुंडल आदि वो किसमें से बनेगी, ये कह रहे हैं 197। अनया प्रक्रियया किल बोद्धव्यं कारणं फलं चैव यस्मादेवास्य सतः तद्वयमपि भवत्येतत्। इसी प्रकार ऊपर कही हुई प्रक्रिया के अनुसार यानी रीति के अनुसार कारण और फल भी उसी कथनचित नित्य पदार्थ के घटते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सत पदार्थ के ही हो सकते हैं। ये कथनचित इसलिए कहा है, पर्याय की तरफ से देखेंगे तो उसी को हम अनित्य कहेंगे, पर्याय को इंक्लूड करके। 198। आस्ताम सदुत्पाद सतो विनाशस्तदन्वयादेशा सोलत्वं च कृशत्वं न गुणस्य च निज प्रमाणत्वा। द्रव्य दृष्टि से गुणों में असत की उत्पत्ति और सत का विनाश तो दूर रहा, इन्हें नहीं होता, परंतु उनमें अपने प्रमाण से स्थूलता और कृशता भी नहीं आती, यानी गुरु और लघु भी नहीं होता। गुरु लघु बताए ना, अपना प्रमाण यानी उसका जो अविभाग प्रतिच्छेदांक का प्रमाण है उसमें ना घटौती होती है ना बढ़ोतरी होती है। मैंने जैसे द्रव्य में हमने देखे थे वैसे गुणों में भी असत की उत्पत्ति हो जाए और सत का विनाश हो जाए ये तो बात कभी नहीं बनी, और उसके जितने अविभाग प्रतिच्छेद है वही भी कायम रहते। भावार्थ, अगुण लघु गुण के कारण गुण तो त्रिकाल एक रूप पूर्ण शक्ति लिए हुए रहता है, ये गुण की बात चलती है, यानी गुण का जो अपना सामर्थ्य है शक्ति वो परिपूर्ण सामर्थ्य उसमें भरा पड़ा है, और वो कब रहेगा तो त्रिकाल एक सदृश। पर्याय में जो कम ज्यादा जानने की सामर्थ्य की उद्भूति अनुद्भूति होती है यानी उत्पाद और व्यय होता है वह स्वकाल की योग्यता से होती है, ज्ञानावरणी के कारण से नहीं। हम तो आरोप देकर कहेंगे ज्ञानावरण का ऐसा क्षोभम है या उसका तीव्र उदय है तो ऐसा कहेंगे तो ज्ञानमंद है, परंतु वो है तो जीव के अपने स्वयं की योग्यता से अपने स्व समय पर। यानी हम देखते हैं हमेशा के उपादान से ही कार्य होता है, तब निर्मित पर आरोप आता है यानी वो उपचार है। ज्ञानावरणीय निमित्त रूप से उपस्थित अवश्य है यानी निमित्त अवश्य होता है परंतु वो कार्य में कुछ नहीं करता, जब परिणमन करेगा तो उस पर आरोप आ जाएगा, वह भी विभाव में अनित्यता दिखलाने के लिए। ज्ञानावरणी के कारण ज्ञान कम होता है इसको आगे नया भास कहेगा, ये तो आभास है वो तो सही नहीं है। जैन धर्म में प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव या विभाव परिणमन समय समय की स्वकाल की योग्यता से होता है, स्वभाव परिणमन तो है ही है, विभाव भी उसकी अपनी योग्यता से होता है, द्रव्य में ही वैसी विभाव रूप परिणमने की उस समय की योग्यता है तो विभाव रूप परिणमता है। किसी भी परद्रव्य के कारण नहीं, वस्तु त्रिकाल पूर्ण स्वतंत्र है, विभाव करने में भी और स्वभाव रूप परिणमने में कैसी सुंदर वस्तु स्थिति है, ऐसी अलौकिक वस्तु स्थिति समझाने वाले सद्गुरुदेव की जय जय जय। ये सरनाराम जी कांजी स्वामी के शिष्य थे, उनसे उन्होंने बहुत कुछ पाया और बार बार उसी की बात वो लिखते भी है यहाँ पर। नोट, वस्तु निरूपण महाअधिकार में पर्याय का वर्णन करने वाला चौथा अवांतर अधिकार समाप्त हुआ, यानी मुख्य अधिकार और उसके जो भेद है उसको अवांतर अधिकार कहते हैं। पहले हमने द्रव्य की बात देखी, फिर गुणों की और अभी पर्यायों की भी देख ली, अब यहाँ पांचवा अवांतर अधिकार शुरू हो जाता है। इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य का वर्णन 199 से 260 तक चलेगा। साठ बासठ गाथा है, अब 199 पढ़ेंगे। इति पर्यायाणाम् इह लक्षणमुक्तम् यथास्थितम् चाथ उत्पादादित्रयमपि प्रत्येकम् लक्ष्यते यथाशक्ति। इस प्रकार पर्यायों का लक्षण जैसा कुछ था कहा गया, यथास्थितम्। अभी चल अथैन्य, अभी इसके आगे क्या बताए इतिया ने, यहाँ तक क्या बताया वो बताते हैं अथैन्य। अब क्या कहेंगे उसको, कहेंगे कि उत्पादादि त्रयमपि, अब उत्पाद व्यय द्रव्य का भिन्न भिन्न स्वरूप यथाशक्ति कहा जाता है। इसके लिए 200 नंबर पढ़ेंगे। उत्पाद स्थिति भंगा पर्यायाणाम् भवन्ति किल न सत ते पर्याया द्रव्यम् तस्माद् द्रव्यम् हितत्रितयम्। उत्पाद स्थिति भंग, भंग ने व्यय के लिए भंग शब्द आया। ये तीनों ही पर्यायों के होते हैं, पदार्थ के नहीं होते हैं, और उन पर्यायों का समूह द्रव्य कहलाता है, इसलिए वे तीनों मिलकर द्रव्य कहलाते हैं।
उत्पाद व्यय ध्रुव द्रव्य, इसको दो अपेक्षा से उसका कथन किया जाता है। एक अपेक्षा ये है कि ध्रुवता जो है वो कायम टिकने वाली है, और नए पर्याय का उत्पाद और पुराने पर्याय का व्यय, ऐसा तीन प्रकार अलग अलग है ये बता रहे। उसी तरह उत्पाद व्यय ध्रुवता को ऐसा बताते कि द्रव्य ही उत्पन्न हो रहा है, ध्रुवता
पहले तो द्रव्य को लिया, क्योंकि पर्याय को इंक्लूड करके द्रव्य को कहा। नहीं नहीं, पहले यहाँ तो पर्याय हम पर घटित कर रहे, पदार्थ के नहीं, पहले पर्याय में घटित कर। ध्रुवता भी पर्याय में, उत्पाद भी पर्याय में, और वे भी पर्याय में। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग जगह कथन आता है। प्रवचन सार में ये बात ली थी ऐसे, ये तो हम पढ़ेंगे, इसको पूरे विस्तार से समझाने वाले हैं।
दूध को द्रव्य कहा था,
हाँ, गुणों का समूह द्रव्य, परंतु यहाँ तो पर्याय का समूह भी है ना, क्योंकि पर्याय क्या है, गुणों के तो अंश है, इसलिए पर्यायों को यहाँ ले लिया है, उसके समूह यानी तीन काल के पर्याय के समूह को हम कहेंगे गुण पर्यायवत द्रव्य, तो पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसलिए उत्पाद व्यय और ध्रुवता, तो इन तीनों पर्याय के होते हैं, और पर्यायों का समूह ही द्रव्य, इसलिए द्रव्य के भी होते हैं, ऐसा कह दिया। देखो भावार्थ पढ़ेंगे। यदि उत्पाद व्यय पदार्थ के माने जावे तो पदार्थ का ही नाश और उत्पाद होने लगेगा, परंतु यह पहले कहा जा चुका है, न तो किसी पदार्थ का नाश होता है, न किसी नवीन पदार्थ की उत्पत्ति ही होती है, इसलिए ये तीनों पदार्थ की अवस्थाओं के भेद हैं, अवस्थाएं हैं, वे अवस्थाएं मिलकर ही द्रव्य कहलाती है, इसलिए तीनों का समुदाय ही द्रव्य का पूर्ण स्वरूप है। देखो पहले यहाँ उत्पाद व्यय और द्रव्य, द्रव्य पर घटित किया था, निकालना भी अब हमारी बातें हो गई है। पेज नंबर 31 के भावार्थ में लिखा है, द्रव्यों की तरह गुणों में भी उत्पाद आदि त्रय होते हैं, अतः गुण नित्यानित्यात्मक है, वहां अपेक्षा अलग है। और यहाँ जो बात बता रहे हैं वो बात अलग है, क्योंकि स्वसहाय जब कहा था तो वो परिणाम ही है ये सिद्ध किया था। पर वो तो बताया मैंने
129
तो उसमें परिणामशील है, परंतु उसमें वो पर्याय युक्त द्रव्य ले लिया, मैंने उसको सर देखो यहाँ कह रहे हैं पेज नंबर 23 23 नंबर पहले तो हमने गुण पर्याय द्रव्य की बात देखी थी और वो द्रव्य का भी दूसरा लक्षण बताते हैं कि उत्पाद व्यय और द्रव्य इससे युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण। देखो 86 नंबर की गाथा पहले गुण पर्याय द्रव्य में ये लक्षण बताया, अभी दूसरा वाक्य जिसको वाक्यांतर कहा पहली लाइन से देखो उत्पाद स्थिति भंग इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है, उससे युक्त है और इतना विशेष है कि वह सत इन तीनों से युगपत युक्त मानने पर ही सिद्ध होता है। उसके बाद और भी नीचे लिखा है देखो यहाँ अभेद दृष्टि से नीचे से दूसरी लाइन अभेद दृष्टि रखने से उत्पाद व द्रव्य ये तीनों अवस्थाएं द्रव्य की कहलाती है, इसलिए द्रव्य ही उत्पाद व द्रव्यात्मक है, यानी वो द्रव्य की अवस्थाएं इसलिए द्रव्य को कहा, अवस्थाओं की अपेक्षा से द्रव्य को उत्पाद व द्रव्यात्मक कहा। अब यहाँ पर्याय प्रकटित करें, देखो अभी अपना जो विषय चल रहा है 47 पेज पर आए थे हम, अब यहाँ पूरे अधिकार में उत्पाद व द्रव्य को भी वर्णन करके समझाएंगे। यहाँ तो ये बात होते है कि ये जो उत्पाद व और द्रव्य है ये पर्याय के होते हैं और पर्याय का ये सभी अवस्थाएं मिलकर ही द्रव्य कहलाती है। अब हम 201 नंबर को पढ़ेंगे तत्रोत्पादोऽवस्था प्रत्यग्रं परिणतस्य तस्य सतः सदसद्भावनिबद्धं तदतद्भावत्ववन्नयादेशात्। उन तीनों में परिणमनशील द्रव्य की नवीन अवस्था को उत्पाद कहते हैं, द्रव्य कैसा तो परिणमनशील है और अवस्था उसकी है तो उसकी जो नवीन अवस्था हुई उसको उत्पाद कहते हैं। यह उत्पाद भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से सत और असत भाव से विशिष्ट है, क्योंकि द्रव्य तो सत है, द्रव्यार्थिक नय से उसको देखेंगे तो सत कहेंगे और पर्याय की वो अवस्था नहीं थी वो उत्पन्न हुई तो उसको असत की दृष्टि से पर्यायार्थिक नय से कहेंगे वो असत से विशिष्ट है। अब ये तो उत्पाद की बात बताएंगे, अब 202 में देखेंगे क्या कहते हैं अपि च व्ययो न सतो व्ययोप्यवस्था व्यय सत तस्य प्रध्वंसाभाव सच परिणामित्वात् सतोप्यवश्यं स्यात्। ये सेकंड लाइन में सच है, संच नहीं है, आपके उसमें स के ऊपर बिंदी है क्या? नहीं है ना, प्रध्वंसा भाव सच स के बिंदी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने हल्के से निकाला है लास्ट टाइम पढ़ा था तभी, इसलिए वहां है कि नहीं मुझे ख्याल नहीं था। या फिर इसका अर्थ देखते हैं। तथा व्यय भी पदार्थ का नहीं होता, किंतु उसी परिणमनशील द्रव्य की अवस्था का व्यय होता है। पदार्थ का ही व्यय मानेंगे तो नाश हो गया ना, अभी कुछ फिर दूसरी अवस्था होने का सवाल ही नहीं है। तो द्रव्य परिणमनशील है और उसके अवस्थाओं का व्यय होता है। इसी को प्रध्वंसा भाव कहते हैं। यह प्रध्वंसा भाव परिणमनशील द्रव्य के अवश्य होता है। प्रध्वंस होने में उसका नाश होना, व्यय होना। हम अभाव में प्रध्वंसा भाव की बात वो यहाँ नहीं लेनी अभी। अभी नाश प्रध्वंस होता है, नहीं नष्ट नाश हो जाता है, व्यय होता है, व्यय के अर्थ में ही आता है। मैंने जो अभी उत्पाद रूप अवस्था है वो दूसरे समय में नष्ट होती है, उसी को प्रध्वंसा भाव। 203 नंबर। द्रव्यं सतः कथञ्चित् पर्यायार्थाच्च केवलं न सतः उत्पादव्ययवदिदं तच्चैकांशं न सर्वदेशं स्यात्। द्रव्य भी कथञ्चित् पर्यायार्थिक न की अपेक्षा से पदार्थ के होता है। पर्यायार्थिक दृष्टि से पदार्थ का द्रव्य है, पर्याय की तरफ से देखेंगे तो पदार्थ को कहते हैं। पर्याय दृष्टि को छोड़कर केवल पदार्थ का द्रव्य नहीं होता, मात्र देखो परंतु उत्पाद और व्यय की तरह वह भी एक अंश स्वरूप है, सर्वांश रूप नहीं। उत्पाद भी एक अंश है, द्रव्य भी एक अंश है और व्यय भी एक अंश है, तो उसको सर्वथा पदार्थ रूप द्रव्य नहीं माना है, केवल पदार्थ रूप नहीं लिया। हाँ तो यानी पर्याय दृष्टि को छोड़कर केवल पदार्थ का द्रव्य नहीं होता, यानी वो तो पर्याय को गिनेंगे नहीं, मात्र गुटस्थ द्रव्य है तो ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार उत्पाद और व्यय द्रव्य दृष्टि से नहीं होते हैं उस प्रकार द्रव्य भी द्रव्य दृष्टि से नहीं होता, किंतु वह भी पर्याय दृष्टि से होता है, इसलिए उसको भी वस्तु का एक अंश रूप कहा गया है। उत्पाद वे पर्याय के होते हैं और द्रव्य तो नित्य है कारण, तो यहाँ अलग दृष्टि से बात करता है। पर्याय आर्थिक के ही अपेक्षा से उत्पाद भी लिया है, पर्यायार्थिक की अपेक्षा से व्यय लिया है और द्रव्य भी यहाँ पर पर्याय दृष्टि से ही लिया है, इसलिए वो भी वस्तु का अंश रूप। ये तो प्रवचन सार में ये बात की है, उत्पाद व्यय और द्रव्य को भी अंश रूप कहा है, वो यहाँ नहीं है। वहाँ जो हम कहते हैं वो गुणों की अपेक्षा से वो नित्य 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 वही का वही, परंतु यहाँ पर्याय यानी उत्पाद व्यय को समझा रहे हैं, उसी में द्रव्य भी एक परिणाम के रूप में ले लिया उसको। तो ये भी एक अंश रूप किया। यदि तीनों को द्रव्य दृष्टि से ही माना जाए तो वस्तु सर्वथा अनित्य और सर्वथा नित्य ठहरेगी। द्रव्य दृष्टि से ही उत्पाद में मानेंगे तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा, और द्रव्य दृष्टि से ही द्रव्य मानेंगे तो सर्वथा नित्य रहेगी, उसमें पर्याय घटित नहीं होगा। 204 नंबर। तद्भावा व्ययमिति वा द्रव्यम तत्रापि सम्यगयम् अर्थः यः पूर्वं परिणामो भवति स पश्चात् स एव परिणाम। द्रव्य का लक्षण तद भाव अव्ययम्, वो म का आधा म है, वो मू दिख रहा है, मू नहीं है, वो आधा म है, कोड़ो कोड़ो हलंत कहते हैं। तो द्रव्य का लक्षण तद्भावाव्ययम् यानी तद्भाव अव्ययम् यह भी कहा गया है। उसका भी यही उत्तम अर्थ है, वस्तु के भाव का नाश नहीं होता, तद्भाव अव्ययम्। अर्थात जो वस्तु का पहले परिणाम है वही परिणाम पीछे भी होता है, ध्रुव अंश हमेशा कायम चलता है। और एक तो उत्पाद रूप अंश है, ये अंश को ले लिया यहाँ पर, इसके लिए भी कुछ उदाहरण देंगे वो दृष्टांत 205 में। पुष्पस्य यथा गंध परिणाम परिणमश्च गंध गुण ना परिणामी गंधो न च निर्गंधादि गंधवत् पुष्पम्। जिस प्रकार पुष्प का गंध परिणाम है और गंध गुण भी परिणामी है, वह भी प्रतिक्षण परिणमन करता है, वह अपरिणामी नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि पहले पुष्प गंध रहित हो और पीछे गंध सहित हुआ हो। हाँ, वो सुगंध दुर्गंध आदि जो कुछ पर्याय वो बात अलग है, परंतु गंध गुण तो हमेशा ही रहेगा, कोई ना कोई गंध तो रहेगा ही है। भावार्थ, गंध गुण परिणमनशील होने पर भी वह पुष्प में सदा पाया जाता है, उसका कभी पुष्प में अभाव नहीं है, बस इसी का नाम द्रव्य है। जो गंध परिणाम पहले था वही पीछे रहता है। वो गंध कैसा है, थोड़ा है ज्यादा है, उसकी बात नहीं, गंध परिणाम इतना लेना। तत्रा नित्य निदानं वंशोत्पादद्वयं सतः तस्य नित्य निदानं ध्रुवमिति तत्रयमप्यंशभेदः स्यात्। उन तीनों में उत्पाद और व्यय ये दो तो उस परिणामी द्रव्य में अनित्यता के कारण है, यानी द्रव्य परिणामी परिणमनशील है और उत्पाद और व्यय के कारण वो अनित्यता है, और ध्रुव नित्यता का कारण है, क्योंकि हम द्रव्य को नित्य अनित्य कहते हैं, पर्याय की ओर से देखेंगे उसको अनित्य कहेंगे और ध्रुव की ओर से नहीं वो नित्य कहेंगे उसको। तो ये जो ध्रुवी अंश कहा उसको, तो ध्रुव नित्यता का कारण है। ये तीनों ही एक एक अंश रूप से भिन्न है। अब कहते ऐसा नहीं है, क्या नहीं है वो बताएंगे। 207 न च सर्वथा हि नित्यम् किञ्चित् सत्त्वं गुणो न कश्चिदिति तस्मादतिरिक्तौ द्वौ वर्णति मात्रौ द्वयोत्पादौ। कोई ऐसी आशंका न करे कि, यानी ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि द्रव्य में सत्व तो सर्वथा नित्य है, बाकी का कोई गुण नित्य नहीं है, यानी 80% तो नित्य है, बाकी कोई गुण नित्य नहीं, ऐसा नहीं मानो कहते। और उससे सर्वथा भिन्न परिणति मात्र उत्पाद वे दोनों है, यानी परिणति वो सर्वथा भिन्न गुणों से ऐसा भी नहीं है। ऐसा मानने में पहला दोष, कोई ऐसा मानता है तो उसमें क्या दोष है, तो उसको कहेंगे। 208 नंबर पहले लाइन में जो लिखा ना लास्ट में, गुणों न परिणाम, गुणों के ऊपर जो बिंदी वो नहीं चाहिए, गुणों के ऊपर की बिंदी निकालनी। अब पढ़ेंगे, सर्वम विप्रतिपन्नम भवति तथा सति गुणो न परिणाम नापि द्रव्यम न सदिति पृथक्वदेशानुषंगत्वात्। ऊपर कही हुई आशंका के अनुसार मानने पर कि सत्वतन सर्वता नित्य है और बाकी कोई गुण नित्य नहीं है और उससे सर्वथा भिन्न परिणति है, ऐसा कोई मानता है तो सभी विवाद कोटि में आ जाएगा, यानी बड़ा प्रश्न चिन्ह उसमें खड़ा हो जाएगा, यानी वो बराबर नहीं होगा। प्रदेश भेद मानने से न गुण की सिद्धि होगी न पर्याय की सिद्धि होगी। सर्वथा भिन्न यानी पृथक देश मानने से यानी उसका क्षेत्र ही अलग मान लिया उन्होंने, तो कहते उसमें न पर्याय की सिद्धि होती है न द्रव्य गुण की, न द्रव्य की और न सत की ही सिद्धि होगी, क्योंकि भिन्न भिन्न स्वीकार करने से एक भी सिद्ध नहीं होता, यानी कुछ भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हाँ सबको अलग अलग माना था, परिणति भी सर्वथा भिन्न मानी थी, सर्वथा भिन्न ने वहां पृथक प्रदेश वाले माने थे।
कौन सी
आपत्ति होती है, यानी उसको सर्वथा पृथक मानेंगे तो क्या आपत्ति आती है उसकी चर्चा की। अब दूसरा दोष ऐसा मानने में दूसरा दोष क्या है वो 209 में बता रहे हैं। अपिचै तद्दूषणमिह यन्नित्यं तद्विनित्यमेव तथा यदनित्यं तदनित्यं नैकस्यानेकधर्मत्वम्। उत्पाद व्यय को सर्वथा भिन्न पर्याय मात्र मानने से और द्रव्य को उससे भिन्न सर्वथा नित्य मानने से, क्या कहते हैं ये सर्वथा भिन्न है पर्याय मात्र, ये सर्वथा भिन्न है दोनों के बिल्कुल भिन्नता है ऐसा मानने से यह भी दूषण आता है कि जो नित्य है वह सदा नित्य ही रहेगा और जो अनित्य है वह सदा अनित्य ही रहेगा, क्योंकि एक के अनेक धर्म नहीं हो सकते सर्वथा मानने से। भावार्थ, द्रव्य को अनेक धर्मात्मक मानने पर तो कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य की व्यवस्था बन जाती है और सर्वथा भिन्नता में वस्तु को एक धर्मात्मक स्वीकार करने पर संपूर्ण व्यवस्था विघटित हो जाती है। यूं शंकर जी ने क्या पूछा था, सत्व तो सर्वथा नित्य है और बाकी गुण नित्य नहीं है, और ये जो सत्व से उत्पाद हुए वो सर्वथा भिन्न है, यानी सत भिन्न है, सत्ता अस्तित्व भिन्न है और ये दो भिन्न है, यानी उसका अलग ही मान लिया था भिन्न से।
यहाँ पर वस्तु
कल्पनिको भेदो न स्याद्रव्यांतरत्ववन्यमात्। भिन्नता में यानी कोई भिन्न मानता है ये द्रव्य है, ये गुण है, यह पर्याय है, ऐसा काल्पनिक भेद जो होता है वह भी उठ जाएगा, एक ही वस्तु में हमने ये इसकी कल्पना करके भेद किए थे, क्योंकि तो ऐसा भेद ही नहीं रहे, तीनों अलग अलग एंटिटी बन जाएगी। ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है। ये भिन्नता में यह द्रव्य है, गुण है, यह पर्याय है, ऐसा भेद जो काल्पनिक भेद जो होता है वह भी उठ जाएगा, क्योंकि भिन्नता में, भिन्नता ने उसके प्रदेश पृथक्त्व मान लिया उसने। भिन्नता में द्रव्यांतर की तरह सभी भिन्न भिन्न द्रव्य कहलाएंगे। ये द्रव्य है, ये गुण है और ये पर्याय, ऐसा हम कहेंगे तो ये तीनों अलग अलग द्रव्य ही हो जाएंगे। यहाँ तो एक ही वस्तु में तीनों को घटित कर। फिर शंका, ननु भवतु वस्तु नित्यं गुणाश्च नित्या भवन्तु वार्धिरित भावाकल्लोलादिव उत्पन्न ध्वंसिनो भवन्त्विति चेत्। वार्धिरिव है वृत्त में, वार्धिरिव द्रव्य, ये शंका है। द्रव्य और गुण समुद्र की तरह नित्य है और पर्याय तरंगों की तरह उत्पन्न होती और नष्ट होती है, ऐसा मानने में क्या दोष है? उपन वस्तु और गुण नित्य भवंतु वार्धिरिव यानी समुद्र की तरह, और भावा जो पर्याय जो है वो कल्लोलादिव, कल्लोल यानी उसकी तरंगों के समान है, कैसी है तो उत्पन्न और ध्वंसी है, तो ऐसा होने दो, उसमें क्या दोष है? उसका समाधान, तन्नयतो दृष्टान्तः प्रकृतार्थस्यैव बाधको भवति अपि तदनुक्तस्यास्य प्रकृतविपक्षस्य साधकत्वाच्च। शंकाकार की यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जो दृष्टांत समुद्र और तरंगों का उसने दिया है वो उसके प्रकृत अर्थ का बाधक हो जाता है, यानी उसका दृष्टांत सही घटित नहीं होता उसकी शंका के लिए, और उसके अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ का साधक हो जाता है, यानी विपक्ष का अर्थ का साधक होता है, वो दूसरे पक्ष को, प्रतिपक्ष को सिद्ध करता है। दृष्टांत उसकी शंका, उसका जो कहना था उसको दृढ़ करने के लिए उसने दृष्टांत दिया समुद्र का, परंतु उल्टा तो उसके विरुद्ध पड़ता है वो। अर्थात वह शंकाकार के पक्ष का बाधक तो है ही, साथ ही सिद्धांत पक्ष का साधक भी है, यानी उल्टे जो सिद्धांत बताया उसी को सिद्ध करने वाला है, शंका को सिद्ध करने वाला नहीं है। उसने जो प्रूफ दिया वो उल्टा तो ओरिजिनल सिद्धांत को सही करता है, यानी उसको साध्य करता है। वह विपक्षभूत अर्थ का किस प्रकार साधक है यह बतलाते हैं। अभी ये कैसे वो साधक है, यानी सिद्धांत को सिद्ध करने वाला ही है, ये यहाँ बताएंगे 213 में। अर्थांतरम ही न सत परिणामेभ्यो गुणस्य कस्यापि एकत्वात् जलधेरिव कलितस्य तरंगमालाभ्य। जिस प्रकार तरंगमालाओं से खचित समुद्र एक ही है, ऐसा ही नहीं है कि तरंग समुद्र से भिन्न हो और समुद्र उनसे भिन्न हो, किंतु तरंगों से डोलायमान होने वाला समुद्र अभिन्न है। उसी प्रकार किसी भी गुण की पर्यायों से सत यानी द्रव्य सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि गुणों का समुदाय और गुणों में तो सभी पर्याय होती रहती है।
तरंग माला तरंग मालाओं से खचित यानी उससे भरा पड़ा ऐसा समुद्र है, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि तरंग समुद्र से भिन्न है और समुद्र उनसे भिन्न है, ये दोनों एक ही चीज में दोनों बात है, जहाँ ध्रुवता है वही उत्पाद और वही भेद है।
अब ये 215 में करेक्शन है,
14
वक्त। अच्छा अच्छा,
करेक्शन तो बता दो,
करेक्शन कर लो। पहला शब्द है ना यत्मा, उसमें यस्मा चाहिए, स यस्मा, यस्मा यत्मा हुए ना, यस्मा कर
लो,
यस्मा यस्मा
की जगह स चाहिए ना।
हाँ पहले क्या होगा ना आपने, और सेकंड लाइन में न सतोतिरिक्त वही उत्पाद लिखा है ना, वहाँ उत्पाद हो जाएगा। व्यू हो गए वो उत्पाद हो। व्युत्पाद लिखा है ना
दूसरे
लाइन में सेंटर में, उसको उत्पाद करना, वो हाँ 214 रह गया ना, हम बीच वाला पढ़ी किंतु य एव समुद्र तरंग माला भवन्ति ता एव यस्मात् स्वयं स जलधि तरंग रूपेण परिणमति। किंतु ऐसा है, ऊपर क्या बताया था कि तरंग भिन्न हो और समुद्र भिन्न, ऐसा नहीं है। किंतु ऐसा है कि जो समुद्र है वे ही तरंग मालाएं हैं, क्योंकि स्वयं वह समुद्र ही तरंग रूप परिणाम धारण करता है। द्रव्य कहीं ऐसे, मैं हमेशा कहती हिमालय में और पर्याय और कन्याकुमारी में ऐसा नहीं है ना। वो अपेक्षावश के कहीं कहीं पर्याय के प्रदेश भिन्न कहते, वो राग के कहीं कहीं कहे ना राग के प्रदेश भिन्न है, क्योंकि उसका द्रव्य क्षेत्र काली, उसको परद्रव्य जिस अपेक्षा से कहा है उस अपेक्षा से। परंतु अभी हमने हम क्या देख रहे हैं, हम ज्ञान की अपेक्षा लगा रहे हैं, स्वभाव रूप परिणमन हो या विभाव रूप, द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से उस समय उस पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है। क्या है, पहले आगम की अपेक्षा छह द्रव्यों का और उसका परिणमन व्यवस्था सोचेंगे, फिर अध्यात्म की अपेक्षा घटित करेंगे। नहीं तो शुरुआत ही हम सर्वथा अध्यात्म की अपेक्षा लगाएंगे तो पर्याय के प्रदेश भिन्न कहने से जो जो दोष आ रहे हैं वो सभी उसमें आ जाएंगे। ये तो किसी अपेक्षावश वहां कथन किया।
वहां जो आपने पढ़ा होगा लाभ के प्रदेश भिन्न है, इस अपेक्षा से इनके लाभ स्वभाव भाव नहीं,
उसको प्रभाव कहा, परद्रव्य भी कहा है, तो परद्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग होते हैं, तो इसके भी ऐसे इस तरह से उस अपेक्षा से 215 पड़ेंगे। यानी यहाँ कह रहे हैं जो तरंग माला है वही तो समुद्र है, समुद्र ही उस रूप परिणमित हो रहा है। यस्मा स्वयं उत्पाद सदिति द्रव्यम व्ययोपि वा सदिति न सतो अतिरिक्त एव हि उत्पादो वा व्ययोपि वा द्रव्यम्। इसलिए स्वयं सत ही उत्पाद है, स्वयं सत ही व्यय है, और वही स्वयं द्रव्य है। सत से भिन्न न कोई उत्पाद है, न व्यय है और न द्रव्य है। कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो सत से भिन्न कुछ नहीं है। यदि वा शुद्धत्वनया नाप्युत्पादो व्ययोऽपि न द्रव्यम् गुणश्च पर्यय इति वा न स्याच्च केवलं सदिति। अथवा दूसरी अपेक्षा बता रही, भेद निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से न कोई उत्पाद है, न व्यय है, न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है, केवल अखंड सत मात्र ही वस्तु है, इन्हें कोई भेद नहीं है। ये उत्पाद वे द्रव्य भेद करके समझाए, बस सत मात्र है, ये गुण है एक अनंत। तो कहते उसके भी वो भेदों की चर्चा नहीं करते, इतने पर्याय है। देखो न गुण है न पर्याय, तो बिना गुण और पर्याय के द्रव्य हो जाएगा, वो शंका ऐसे उल्टा नहीं लेना। जिसे समय स्थान में कहते ना, न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है, तो इनके बिना आत्मा हो जाता है, भेद नहीं है। यहाँ पर भी लेना है, भेद नहीं है। और उसके लिए कौन सा नहीं दिया, भेद निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी। देखो ये द्रव्यार्थी नहीं भी उत्पाद व्यय सापेक्ष भी होते हैं, उत्पाद व्यय सापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी नहीं भी होता है, तो उसमें उत्पाद व्यय की अपेक्षा लगाकर द्रव्य को देखते हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे भेद है, निरपेक्ष सापेक्ष करके तीन तीन करके छह भेद कुछ है उसके। यहाँ तो कौन सा लिया है, भेद निरपेक्ष, यानी किसी भी अपेक्षा कोई भेद नहीं कर, भेद की अपेक्षा ही नहीं लेना है। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अभी उसमें भेद ही निकाले ना, उत्पाद व्यय वाला भी भेद नहीं लिया नहीं और द्रव्य वाला भी नहीं लिया, तो बस सतमात्र वस्तु ऐसा कहेंगे। इसलिए कहते हैं न उत्पाद है न व्यय है न द्रव्य है, द्रव्य को भी नहीं है कहते।
तो
अभेद अखंड एक वस्तु है, ये तो भेद क्यों करें फिर समझने का, वस्तु कैसी है एक बार समझ लिया तभी कहते भेदों को कौन कर दो।
जैसे अभी आपने बताया कि समय चल रहे आत्मा में ज्ञान है न गुण है न चारित्र है न कुछ भी कोई गुण, तो ऐसा भेद नहीं है ऐसा जान, तो भेद की बात देखेंगे तो हम अभेद को कहां देखेंगे। भेद निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी बताए, फिर से बोलो।
देखो अथवा भेद निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी नय से न कोई उत्पाद है न व्यय है न द्रव्य है, क्योंकि ये तीनों ही अंश हो गए ना उसके, भेद हो गए। न गुण है न पर्याय है, वो भी भेद है, इतने अनंत गुणों का और अनादि अनंत पर्यायों का समूह कहने से वो भी भेद हो गया। तो क्या है, केवल अखंड सत्मात्र ही वस्तु है, जिसको कहते हैं वो तो शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध नय भी कहते हैं उसको, शुद्ध नय अभेद, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं करता, न द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला न उत्पाद वे द्रव्य वाला, शुद्ध नय कहते हैं। थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये भी भेद कर दिए ना, वहाँ तो बिल्कुल कोई भेद नहीं है, वो शुद्ध ने जो समय सार में लिखा है दृष्टि का विषय जो है वो शुद्ध ने से बताया हुआ आत्मा बिना भेद वाला। पहले भेद कर करके समझेंगे, वस्तु समझ में आई अभी अनुभव करना है, तो कहते भेदों को गौण कर दो, यही पूरा समय सार में यही बात है, उसी को अलग अलग एंगल से समझाए। केवल अखंड सत्मात्र ही वस्तु है, यह दृष्टि इस नय से देखने पर वस्तु में भेद स्वीकार नहीं करती, इसी का भावार्थ अंत में दृष्टि परिज्ञान में देखिए। अब आगे चलकर हम देखेंगे उसको, 217 को पढ़ेंगे। अयम अर्थो यदि भेद स्यादुन्मज्जति तदा हि तत्त्रितयम् अपि तत्त्रितयम् निमज्जति यदा निमज्जति समूलतो भेदः। देखो यहाँ कहते उन्मज्जति और निमज्जति, उन्मज्जन यानी वो प्रकट होना, उत्पन्न होने वो प्रकट हो जाना, और निमज्जत यानी उसमें अंदर डूब जाना, विलीन हो जाना, लीन हो जाना। ये आपको मालूम होगा ना, उन्मग्न और निमग्न दो नदी है। ये किसमें है? विजयार्घ पर्वत में जब चक्रवर्ती वो उसको क्रॉस करके जाता है ना, तो अंदर गुफा में है वो दो नदियाँ। तो उन्मग्ना में क्या है, कुछ भी छोटी भी छोटी चीज भी पड़ जाएगी, कितने भी भारी भी हो या हल्की भी, ऊपर ऐसे बाहर फेंकी जाती, ऊपर ऊपर आते। और वो निमग्ना में वो कागज का टुकड़ा भी होगा, हल्की भी वस्तु हो तो नीचे डूब जाती। ऐसी दो नदियाँ उन्मग्ना निमग्ना। स्वामी जी के कथन में भी, स्वामी जी के कथन में भी हमेशा आता है, जब जब ये उन्मग्ना इसकी बात आती है, यानी वो कैसे उसको क्रॉस करते वगैरह, बहुत सारा लंबा चौड़ा कथन है उसमें। चक्रवर्ती की बात आती तब उसमें आती है। देखो यहाँ बात अलग बात रहे है, देखो हम इसका अर्थ पढ़ेंगे 217 का। उपर्युक्त कथन का यही सारांश है कि अभी जो हमने अभी तक चर्चा की उसका सारांश यह है कि यदि भेद बुद्धि रखी जाती है तब तो, यानी भेद की दृष्टि से देखेंगे तो, बुद्धि यानी वहां दृष्टि, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों ही सबके अंश रूप से प्रकट हो जाते, उन्मज्जति, वो भेद प्रकट होते, क्योंकि हमने भेद की दृष्टि से देखे तो भेद दिखाई देते हैं। और यदि मूल से भेद बुद्धि को ही दूर कर दिया जाए, भेद बुद्धि को दूर करने ने अभेद दृष्टि से देखा, कोई भी भेद स्वीकार नहीं करेंगे हम, तब तीनों ही सन्मात्र वस्तु में लीन हो जाते हैं, वो तीनों दिखाई नहीं देते, वस्तु सत मात्र दिखाई देती, सन्मात्र यानी सत मात्र वस्तु दिखाई देती है, यानी उसमें वो सत में लीन हो गए। पहले भेद रूप से हमने उसको देखा समझा, अभी हम वो भेद की दृष्टि नहीं देखेंगे तो वो भेद कहाँ गए, वस्तु में निमग्न हो गए, लीन हो गए। यहाँ क्या कहते भावार्थ, भेद सापेक्ष पर्यायार्थिक नैसे, पर्याय करना यानी भेद करना, वो भेद सापेक्ष पर्यायार्थिक नैसे, ऊपर लिखा था भेद निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसे, तो भेद सापेक्ष पर्यायार्थिक नैसे वही सत, कौन सा सत, जो पहले हमने भेद निरपेक्ष से जिसको देखा था, जिसमें न उत्पाद है न व्यय द्रव्य है, वही सत, दूसरा सत नहीं है, वही सत भेद सापेक्ष पर्यायार्थिक नय से कैसा है, उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप है। जो भेद निरपेक्ष दृष्टि से जो सत मात्र वस्तु थी, अभी हम भेद दृष्टि से देखेंगे जिसको पर्यायार्थिक नय भी कहते हैं, तो वह सत कैसा है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। और भेद निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वही सत केवल सन्मात्र यानी सत मात्र ही प्रतीत होता है, यानी हम जिस दृष्टि से देखेंगे वस्तु वैसे दिखाई देती है। भेद की दृष्टि से देखेंगे तो भेद दिखाई देंगे, अभी हम भेद की दृष्टि से छोड़ देंगे, भेद निरपेक्ष दृष्टि से देखेंगे यानी अभेद की दृष्टि से देखेंगे तो भेद उसमें लीन हो जाते हैं।
बताइए
सब द्रव्य
लक्षण उसमें सारे भेद
भी
शुद्ध
द्रव्य और वही सत
और वही कैसा
सत
है और वो सत कैसा है सापेक्ष जब हम वहाँ जाते हैं
शंका का देख लेते अभी है तो 218 में पहली लाइन में करेक्शन है, तीसरा शब्द ने द्वावप्यंशात्मक प्य के ऊपर बिंदी चाहिए और शा के ऊपर बिंदी थी वो निकाल देना चाहिए, शायद पहले का करेक्शन किया होगा आपके। देखो द्वावप्यंशात्मक चाहिए, द्वाव प्य के ऊपर बिंदी चाहिए प्यम, और अंशात्मक ऐसा शब्द हो जाता है ना, तो शाह के ऊपर नहीं चाहिए। अब पढ़ेंगे देखो, ननु चोत्पादत्वंसौ द्वावप्यंशात्मकौ भवेताम् हि द्रव्यं त्रिकाल विषयम् तत्कथमंशात्मकं भवेदिति चेत्। ये हमारा आपका सबका प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्पाद और व्यय ये दो अंशात्मक है तो ठीक है, द्रव्य तो त्रिकाल है तो कहते उसको अंश क्यों कह रहे हैं, है ना। देखो अर्थशंकाकार कहता है कि उत्पाद और ध्वंस यानी व्यय ये दोनों ही अंशात्मक अंश स्वरूप रहो यानी वो स्वीकारे उसको, परंतु द्रव्य तो सदा रहता है, वह किस प्रकार अंश रूप हो सकता है, ये उसकी शंका है। अब इसका समाधान तो कल देखना पड़ेगा, अभी शंका ही रहने दो।
जानी के ज्ञान से सूझे लोकायो सोवाणी मस्तकनम सदा वेतहु।